ओम शांति, ओम शांति। आप पिछले 2-3 दिनों से इन प्रातःकालीन सत्रों में राजयोग के विषय में समझ भी रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं। तो आपने समझा, राजयोग आत्मा का परमात्मा से मानसिक स्नेहपूर्ण संबंध है और ये सर्वोच्च संबंध है और सर्व श्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला भी संबंध है। राजयोग इसलिए राजयोग है क्योंकि ये हमें स्वयं का राजा बनाता है, यानी इससे हम कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं, अधिकारी बनते। सामान्यतः मनुष्य कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, यानी जैसे इंद्रियां चलाती हैं वैसे जीवन चलता है। जो नहीं देखना चाहिए वो हम देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। इसको कहते हैं इंद्रियों की गुलामी। अधिकारी माना जो देखना है, जो सुनना है, जो बोलना है, जो करना है, उस पर हमारा अधिकार। तो राजयोग से ये इंद्रिय संयम हमारे अंदर आने लगता है। राजयोग इसलिए राजयोग है क्योंकि इसमें अनेक राज समाये हुए हैं। उन राजों को समझने के बाद ही हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो वो राज है आत्मा का राज, परमात्मा का राज, समय का राज। तो ये सब राज आप समझ रहे हैं, समझे भी हैं, तो हम राजयोग का अभ्यास तब कर पाते हैं। और ये राजयोग जो है वो एक चार्जर की तरह है। जैसे चार्जर में जब रिचार्जेबल बैटरी कनेक्ट की जाती है पावर सोर्स से, तो वो चार्ज हो जाती है। और उसका साइंटिफिक रीजन ये होता है कि बैटरी डिस्चार्ज इसलिए होती है क्योंकि उसके केमिकल कंपोनेंट्स डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसको चार्ज करते हैं तो फिर से उसके कंपोनेंट्स रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं और वही बैटरी फिर हम यूज कर पाते हैं। तो ऐसे ही हमारी आत्मा भी एक बैटरी की तरह है, और जब आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हमारे मन वचन कर्म डिसऑर्गेनाइज होते हैं, यानी हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन जब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज है तो सोचने और करने में समानता आती है। तो ये अंतर होता है। और राजयोग एक बांध की तरह भी है। जैसे पानी पर हम बांध बनाते हैं, नदी पर बांध बनाते हैं, तो उस पानी के कई सदुपयोग होते हैं। वो सिंचाई के काम आता है, उसको चैनलाइज करते हैं पानी को, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बिजली बना सकते हैं, वो पानी पीने के काम भी आता है। तो ऐसे ही मन की शक्तियों का हम संचय करते हैं राजयोग के द्वारा। और जब हमारा मनोबल उच्च होता है तो व्यक्ति फिर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मन को वो सही समय पर सही दिशा देकर के सफल हो जाते हैं। और राजयोग में सभी योग समाये हुए हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें अनेक प्रकार के योग भारत में किए जाते हैं। राजयोग स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है, ये किसी संत ने या महात्मा गुरु ने नहीं सिखाया है, और इसीलिए ये सभी योगों का फल देने वाला है। तो ये ज्ञान योग है, ये बुद्धि योग है, ये कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, सहज योग। तो राजयोग ज्ञान योग है क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है। इसमें हमको समझ मिलती है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अंधश्रद्धा नहीं है, ये अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, इसलिए ज्ञान योग है। ये बुद्धि योग है क्योंकि राजयोग में हम परमात्मा से मन बुद्धि के द्वारा संबंध का अनुभव करते हैं, और ये सूक्ष्म अदृश्य माध्यम है। आज वर्तमान विज्ञान के युग में हम इन अदृश्य माध्यमों के अनुभवी हैं। मोबाइल से हम बात करते हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं, दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रक्रिया तो होती है। हमारे मोबाइल सेट से वेव्स ट्रेवल करती हैं टावर के थ्रू और दूसरे के सेट तक पहुंचती हैं, फिर वही प्रक्रिया होती है। पर बात हमारी ऐसे होती है जैसे कि हम सामने ही बात कर रहे हैं। हम रिमोट यूज करते हैं, कई साधन जैसे हम एसी ऑन करेंगे या टीवी ऑन करेंगे, अब दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑपरेट हो रहा है। तो ऐसे ही जब हम मन में ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमारी विचार तरंगे जो हमें दिखाई नहीं देती वो ईश्वर तक पहुंचती हैं, और परमात्मा से शक्ति को भी हम ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए ये बुद्धि योग जो हमारा हम कहेंगे तीसरा नेत्र है, यानी जो हमारी अंतर्दृष्टि है, इसीलिए मन रूपी चक्षु कहा जाता है, उससे हम परमात्मा को देखते हैं और उस संबंध का अनुभव करते हैं। यूं भी भक्ति में भी हम मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो हमें पता है मूर्ति तो जड़ है, मूर्ति तो सुनती नहीं है, फिर भी हम उससे बात करते हैं और अपने भाव व्यक्त करते हैं। और जब हमारे मन की भावना पूरी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान ने मेरी सुन ली, मतलब भगवान जहां भी है उस तक मेरे मन के भाव पहुंच गए, इसी भाव से हम वहां अपने भाव व्यक्त करते हैं। तो परमात्मा तक हमारे मन के भाव ही पहुंचते हैं। राजयोग कर्म योग है, कर्म योग का अर्थ होता है कर्म करते हुए ईश्वर की याद। अगर हम परमात्मा की याद में कर्म करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, तो वो हमारे सत्कर्म हो जाते हैं। और हम बहुत सारे कार्यों को करते समय जरूरी नहीं है कि उसमें हमारी बुद्धि लगती है, क्योंकि हम उनके अभ्यस्त होते हैं, तो ऐसे समय पर हम ईश्वर को याद कर सकते हैं। और ये जो सत्कर्म है ये पदम गुना फल देने वाले होते हैं। सामान्य कर्म का नियम है जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, लेकिन ईश्वर की याद में किए गए कर्म आम का बीज बोने की तरह है। जैसे आम का बीज बोते हैं तो तुरंत फल नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी फल मिलेगा तो इतना मिलेगा कि हम भी नहीं खाएं, हम ही नहीं हमारी पीढ़ियां भी उसको खाती हैं। तो उसके लिए कहते हैं दादा बोए और पोता खाए। तो ऐसे ही जो सत्कर्म होते हैं वो हमें वर्तमान में ही फल नहीं देते, लेकिन आने वाले अनेक जन्मों के लिए हमारी प्रारब्ध और भाग्य भी उनसे बनता है। और राजयोग भक्ति योग भी है। भक्ति माना ईश्वर से संबंध का अनुभव करना, और हम भगवान को संबंध से याद भी करते हैं। हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्हें त्वमेव माताश्च पिता त्वमे। फिर हम कहते हैं त्वमेव सर्व मम देव देव, यानी आप ही मेरे सब कुछ हैं, यानी भगवान से हम सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। उनके लिए हम कहते हैं ही इज ऑल इन वन। दुनिया में एक में सब संबंध नहीं हो सकते, माता अलग होगा पिता अलग होगा बहन अलग भाई अलग दोस्त अलग पति अलग पत्नी अलग बच्चे अलग सब अलग अलग होते। तो कहते हैं दिल बटी हुई होती है, कुछ इसमें कुछ इसमें हो, लेकिन एक ईश्वर का संबंध ऐसा है जिसमें हम एक में ही सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं। और उसके लिए चाहिए प्रेम श्रद्धा और समर्पण का भाव। जो भी परम भक्त हुए उन्होंने भगवान से संबंध अनुभव करते हुए उन्हें याद किया, जैसे प्रहलाद ने उन्हें पिता के रूप में याद किया, मीराबाई ने उन्हें पति के रूप में याद किया, अर्जुन ने उन्हें मित्र के रूप में याद किया। तो जो संबंध उन्होंने ईश्वर से अनुभव किए, समय आने पर परमात्मा ने उस उनको निभाया भी और उनकी रक्षा भी की, वो सब हम जानते हैं जो भी उनकी कहानियां हैं। तो राजयोग में हम परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, इसीलिए ये भक्ति योग भी है और ये संन्यास योग भी है। वैसे संन्यास का अर्थ क्या होता है? हमारी भारतीय संस्कृति में घर बार छोड़ करके आप कहीं तीर्थ पर बैठे हैं, जाकर के भगवान की याद में भजन में अपना जीवन बिताते हैं। तो इसलिए संन्यास सुनते ही लोग थोड़ा भय में आ जाते हैं कि कहीं हमें कुछ संन्यास तो नहीं करना पड़ेगा, संन्यास माना कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। तो राजयोग में हम वो संन्यास नहीं करते, घर बार का संन्यास या अपनी जिम्मेवारियों का, अपने कर्मों का, अपने संबंधों का संन्यास नहीं, लेकिन कौन सा संन्यास? बुराइयों का संन्यास, विकारों का संन्यास हम राजयोग में करते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, संबंधों का निर्वाह करते हुए हम बुराइयों का संन्यास कर सकते हैं, करना भी हम चाहते हैं क्योंकि इनसे ही हम दुखी होते हैं, लेकिन विधि नहीं मालूम कि कैसे हम करें। तो परमात्मा हमें वो विधि बताते हैं। अब दुनिया में हम देखते हैं वो सन्यासी हो जाते हैं लेकिन फिर भी विकारों को नहीं छोड़ पाए तो क्या होता है? विकार को, वो सन्यास को बदनाम करते हैं। आज कितने सन्यासी हैं जिनको जेल हो गई। क्यों जेल हो गई? क्योंकि वो अपने विकारों से मुक्त नहीं हो पाए। तो हम संसार में रहते हुए विकारों का सन्यास करते हैं, उस सन्यास से भी महान सन्यास है। और ऐसे ही राजयोग समत्व योग है। समत्व योग का अर्थ है निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख, ये जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ये भावनात्मक आवेग पैदा करते हैं मनुष्य के जीवन में, है ना। अगर वो बहुत सुखी हो जाता है, सफल होता है, उसकी प्रशंसा होती है तो अहंकार आ सकता है। अगर वो बहुत दुखी है, असफल है, हानि में है तो बहुत निराश हताश हो जाते हैं लोग, यहाँ तक कि अपना जीवन भी समाप्त कर लेते हैं। लेकिन एक योगी हर स्थिति में संतुलित रहता है, चाहे वो सुख सफलता है चाहे वो दुख असफलता है, यानी वो स्थिर चित होता है, वो अपने मन को संतुलित करना जानता है क्योंकि पता है कि हर स्थिति परिवर्तनशील है, ना सुख सदा रहने वाला है और ना ही दुख सदा रहने वाला है। तो इसीलिए इसे समत्व योग भी कहते हैं। तो योग का अर्थ ये नहीं कोई हमें सिद्धियां मिल जाएंगी, कोई चमत्कार हम करने लगेंगे, लेकिन हमारा जीवन ही चमत्कारिक बन जाए, ऐसे हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएं, ये योग की सिद्धि है। और राजयोग हठ योग भी है। हठ योग का अर्थ क्या होता है? दुनिया में जो भक्त हठ करते हैं वो भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए या फिर दर्शन के लिए, अब नवरात्रे रखेंगे, 9 दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे कि जब तक मुझे देवी के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम इस तरह की साधना करेंगे, बहुत शरीर को कष्ट देते हैं कई प्रकार के। तो राजयोग में हम इस तरह का हट नहीं करते, लेकिन राजयोग में हम दृढ़ संकल्प, हट माना एक दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा करते हैं और उससे हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जैसे आज सारा दिन जो भी हो मुझे गुस्सा नहीं करना है। अब कई बातें आ सकती हैं जो मुझे गुस्सा दिला सकती हैं, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई झूठ बोल देगा, कोई मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि मैंने व्रत लिया है ना, वो व्रत भी लेते हैं तो क्या करते हैं? मानो आपने वो व्रत किया है और कोई आपके सामने स्वादिष्ट भोजन की थाली ले आए तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं, आज मेरा व्रत है, तो हम नहीं स्वीकार करते उसको। तो ऐसे ही कोई भी ऐसी स्थिति जो मुझे गुस्सा दिलाने वाली मेरे सामने आ रही है तो मुझे क्या कहना है? नहीं, आज क्रोध का मेरा व्रत है, मुझे आज नहीं करना है। तो फिर एक दिन हम उसमें सफल हो गए तो फिर हमें हमेशा के लिए वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम अपनी कमजोरी पर विजय पा सकते हैं। तो हम सभी भगवान को याद तो करते हैं, ऐसे नहीं कि हम याद नहीं करते, लेकिन हमारी अपनी अपनी विधियां हैं। तो हम वो विधि अपनाते हैं जो हमारे पूर्वज करते आए या जो परंपरा से चला आ रहा है। तो ज्यादातर क्या होता है, हमारे घर में पूजा घर होता है जिसमें हमारे जो भी प्रिय देवता हैं, इष्ट हैं, उनका हम चित्र रखते हैं या मूर्ति रखते हैं और रोज दिया बत्ती करना या जो भी स्तुति हमारी विधि है वो हम करते हैं। और क्या अपेक्षा रखते हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। और ये भी कईयों को भय भी होता है कहीं हमारे भगवान हमसे नाराज ना हो जाए, तो ये रोज तो हमें कुछ तो करना ही है। और मुख्य दिन होते हैं तो हम मंदिरों में दर्शन करने पहुंच जाते हैं, है ना। फिर वो मुख्य दिनों में मंदिरों में बहुत भीड़ भी होती है, भले हमें सही तरीके से दर्शन हो या ना हो, लेकिन हम वो विधि भी, क्योंकि विशेष दिन है, विशेष हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, तो हम वो कार्य भी करते हैं। फिर दूसरी विधि हम अपनाते हैं माला जाप। कई लोग माला कर, थोड़े ज्यादा भक्त होते हैं वो फिर माला करते हैं कि इतनी माला करेंगे तो जो भी उनके इष्ट हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, शिव हैं, वो जाप करते हुए मणके घुमाते हैं। तो कबीर दास जी ने क्या कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, है ना। माला के मन के हम घुमाते हैं, ज्यादा समय मन नहीं ध्यान में लगता, हाँ, बाद में मन अपना काम करता है और हाथ अपना काम करता है। हाथ में माला घूमती रहती है और मन भी घूमता रहता है, इसलिए उन्होंने कहा कि माला घुमाने की बात नहीं, कहाँ परिवर्तन लाना है मन में। और ऐसे ही मंत्र जाप भी करते हैं। कई बार गुरु हमको मंत्र देते हैं और वो मंत्र होते हैं संस्कृत में, और संस्कृत हमारी भाषा है नहीं, तो हमें मंत्रों के अर्थ ही नहीं पता होते। अब जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर भुवा स्वा सुत सवितर वारेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो नाम प्रचोदयात्। कितनों को अर्थ मालूम है, एक, हाँ, तो हमें, हाँ, दो चार हैं, तो ज्यादातर हमें वो अर्थ ही मालूम नहीं होते, तो हमारे भाव ही नहीं जुड़ते। फिर हमें कहते हैं इतनी बार मंत्र जपना, 108 बार, 1008 बार या जितना कई बार 1,00,000 बार भी। अब हमारी बुद्धि कहाँ लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है, गिनती में, ये इतनी बार हुआ कि नहीं हुआ। हम भगवान को याद नहीं कर रहे, किसको याद कर रहे हैं, गिनती को याद कर रहे हैं। तो ऐसा होता है जब हम मंत्र जपना शुरू करते हैं तो संसारिक बातों से मन निकल जाता है और मंत्र में आता है, तो थोड़ा मन को शांति मिलती है। लेकिन ईश्वर से हमारा योग नहीं लग पाता। हाँ, जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, अब ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करती हूँ या करता हूँ। पहले तो मुझे ये ही पता नहीं मैं कौन, फिर हमें ये भी पता नहीं कि शिव कौन है, कहाँ रहते हैं, तो क्या मेरा नमन शिव तक पहुँचता है, नहीं पहुँचता है। तो वो सही अर्थों में हम मंत्र से, ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। फिर मंत्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सलाह देना, जैसे मंत्री माना सलाहकार, मंत्रणा माना सलाह। तो मंत्र का मतलब है मैं अपने मन को सलाह दूं, मन तुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। तो राजयोग में हम वही करते हैं, हम अपने मन को दिशा देते हैं, मन तुझे क्या सोचना है, तो हम क्या विचार दे रहे हैं, हमें समझ मिली ना मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, किसकी संतान हूँ, हाँ उससे मेरा क्या संबंध है। तो हर एक विचार एक मंत्र की तरह है। तो हमने संकल्प किया मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो हम शांति का अनुभव करते हैं क्योंकि शांति मेरा स्वभाव है। तो शांति मेरे से एक संकल्प की दूरी पर है या ईश्वर मेरे से एक संकल्प की दूरी पर है। तो राजयोग में हर एक विचार ही एक मंत्र की तरह है। तो हम अपने भावों से ईश्वर से संबंध का अनुभव करते हैं। फिर हम ये जो स्थूल आधार यूज करते हैं, मंत्र माला मूर्ति जो कहा, वो स्थूल आधार हमारे सूक्ष्म मन को भगवान तक नहीं ले जा पाते। इसलिए राजयोग में हम कोई स्थूल आधार यूज नहीं करते। आपने यहाँ देखा, दो तीन दिन से आप यहाँ रह रहे हैं, कोई इस तरह का पूजा पाठ भक्ति करते हुए देखा आपने? नहीं। तो यहाँ पर हम सूक्ष्म आधार प्रयोग करते हैं, जो सूक्ष्म मन को ईश्वर से जोड़ पाते हैं। तो वो सूक्ष्म आधार वही है जिससे हम किसी मनुष्य को याद करते हैं। किसी मनुष्य को हम याद करते हैं, सबसे पहले हमें उसका परिचय चाहिए। पहचान चाहिए। बिना पहचान के हम किसको याद कर सकते हैं? याद कर सकते हैं? दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, हम कितनों को याद करते हैं जिनसे हम परिचित हैं? और वो कुछ 50-100 लोग जिनसे हम परिचित हैं, और उनमें भी अधिक याद हम किसको करते हैं? जिनसे हमारा संबंध है। माना हमारे परिवार में मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको हम याद करते हैं। और उनमें भी ज्यादा याद हम किसको करते हैं? जिससे हमारा स्नेह है, विशेष स्नेह है उनके लिए। तो हम कहते हैं कि इनको हम भूल ही नहीं सकते, याद करने की तो बात ही नहीं। क्या स्थिति होती है? जिनसे बहुत स्नेह होता है उनके लिए क्या स्थिति होती है? भूलें कैसे? कोई कोई होते हैं ना जीवन में, कोई ना कोई ऐसे होते हैं कि जिनके साथ इतना स्नेह होता है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई होता है ऐसा। तो वो स्नेह और प्राप्ति, जिससे प्राप्ति हो रही है उसको भी हम याद करते हैं। तो ये चार आधार हैं। तो परमात्मा से हमारी पहचान हुई, हुई या नहीं हुई? ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका रूप क्या है, गुण क्या है, सबको पहचान मिली ईश्वर की। तो अब पहचान हो गई और ये भी समझ गए कि ईश्वर से हमारे सर्व संबंध है। वही हमारा माता पिता है, शिक्षक है, गुरु है, खुदा दोस्त है, साथी है। तो हम उन संबंध से परमात्मा को याद करते हैं। और जब हमें प्राप्ति होती है तो स्नेह बढ़ता है, और जितना स्नेह होता है ईश्वर से उतना हमें उसे याद करना नहीं पड़ता, अपने आप उसकी याद आती है। तो संबंध के आधार पर तीन प्रकार की याद होती है। एक होती है हम याद करते हैं, दूसरी याद आती है, और तीसरा याद सताती है। तीन प्रकार की याद होती है। एक हम याद करते हैं। किसको याद करते हैं? स्वार्थ से हम याद करते हैं। जिससे मुझे कुछ काम है, हम सोचेंगे मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। या कोई अवसर है हमारे यहाँ, कोई ऐसा मौका है तो हमें निमंत्रण देना है, तो हम पूरी लिस्ट बनाते हैं। माना उनको याद करते हैं, कोई रह ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे नाराज हो जाए, तो हम याद करते हैं। फिर हमें याद आती है किसकी? जिससे स्नेह है, जैसे कहा, जिनसे स्नेह है उनको हमें याद करना नहीं पड़ता, उनकी याद आती है। और तीसरे प्रकार की याद जो सताती है, यानी दुख देने वाली याद। तो कोई कोई याद हमें किसी की दुख भी देती है। तो वो किन की याद दुख देती है? दो तरह से। एक तो मृत्यु हो गई, मानो हमारा प्रियजन है, उनकी मृत्यु हो गई। अब हमें पता है जो चले गए वो आने वाले तो नहीं है। अब जब भी उनको याद करेंगे तो दुखी होंगे, है ना? और नहीं, कई होते हैं जो हमसे बिछुड़ जाते हैं, यानी हमारे साथ थे लेकिन जो भी कारण हो, कई बार लोग धोखा भी देते हैं या कई कोई कारण से भी अलग हो जाते हैं। कोई विदेश जाकर बस गया, बेटा है विदेश जाके बस गया, अब माँ यहाँ रहती है और उसको पता है कि बेटा विदेश में है, बीमार है, तो उसके बारे में सोच सोच के दुखी होती रहेगी कि पता नहीं उसने ठीक से डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया, ठीक से खाता है नहीं खाता है, माना। तो ये दुख देने वाली याद, भगवान की याद, इन तीनों याद में से कौन सी होनी चाहिए? हम याद करते हैं, याद आती है और याद सताती है, कौन सी होनी चाहिए? जो समझते हैं हम याद करते हैं वो हाथ उठाइए। अच्छा, जो समझते हैं हमें याद आती है वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो समझते हैं याद सताती है वो याद हाथ उठाएं। अच्छा, तीनों में है। तो भगवान की याद जो है वो सताने वाली याद नहीं हो सकती। हो सकती है सताने वाली याद, क्योंकि वो सुख दाता है। कभी भी भगवान की याद हमें दुख नहीं देती, परमात्मा की याद हमें सुख देने वाली याद है, क्योंकि वो दुख हरता सुख करता है। और ईश्वर हमसे कभी बिछड़ेगा नहीं, वो तो अजर अमर अविनाशी है, हम ही भूल जाते हैं उसको। हम जब याद करें वो हमारे लिए हाजिर है, है ना। फिर दूसरा, याद आती है वो नहीं आती, क्योंकि इतना समीप संबंध हमारा भगवान के साथ अभी रहा नहीं। हम आपसे एक एक्सरसाइज कराते हैं, आप अपने उस संबंध को याद करो जिससे आपको बहुत प्यार है। जैसे अभी हमने कहा कि कोई ना कोई हर इंसान के जीवन में होता है, तो वो नंबर वन जिससे आपको बहुत प्यार है, आप उसको याद करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट आपको जिससे प्यार है उसको याद करो। अब उसके भी नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे कौन है उसे याद करो। अच्छा, इन तीनों में किसी, आप सब ने जो भी किया, कहीं भगवान आए, जिसके इन तीन लेवल पर भगवान आए वो हाथ उठाइए। देखो, बहुत कम। तो इसका मतलब इतने समीप संबंध में भगवान हमारे नहीं है कि उसकी याद हमें आए। तो हम भगवान को याद करते हैं, करते हैं माना स्वार्थ से याद करते हैं। करते हैं जब जीवन में कोई कष्ट आता है, दुख आता है, या कोई हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है, तब हम भगवान को याद करते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। आज एक स्टूडेंट है, उसे पास होना है, तो भगवान को कहता है मैं पास हो जाऊं। ठीक है, पास हो गए, अब भगवान अच्छी नौकरी लगा देना। जब भी जाएंगे भगवान के सामने, चलो अच्छी नौकरी लग गई, फिर कहेंगे अच्छे घर में शादी करा देना। ठीक है, शादी भी हो गई, अब क्या हो चाहिए? नहीं, घर चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, फिर एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, फिर अगर बेटा नहीं है तो एक बेटा होना चाहिए। चलता रहता है सारी जिंदगी, और सौदा भी चलता है, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो कितने रुपए का प्रसाद, जितनी मेरी क्षमता है उतना हम भगवान से सौदा करते हैं। मेरी इच्छा पूरी हो गई तो प्रसाद मिलेगा, और पूरी नहीं हुई तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान से सौदा कर रहे हैं, माना उसको भी हम इंसान की श्रेणी में ला रहे हैं। हम देखते हैं आज के मनुष्य बिना लेन देन के काम नहीं करते, तो भगवान भी बिना लेन देन के हमारा काम नहीं करेगा, तो वो हम सौदा उसके साथ भी करके आते हैं। तो कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। बिना मांगे मोती भी मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती। हम अपने जीवन में अनुभवी हैं, आपके सामने कोई भिखारी आता है आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? हम सोचते हैं कमा सकते हैं, क्यों नहीं कमा के खाते। अच्छा, चलो कोई हमें दया का पात्र लगता है, सचमुच वो अपाहिज है या जो भी, तो हम कितना देते हैं उसको? मेरी पॉकेट में सबसे छोटा नोट वो निकाल करके हम देंगे। कितना मिलता है मांगने वाले को, कितना मिलता है समझ सकते हो? भगवान के सामने हम खड़े हैं जाकर के, उसको पता है कि उसने हमें सर्वश्रेष्ठ योनि दी है, मानव योनि, जो असंभव को संभव कर सकती है। और हम छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं, भगवान नहीं सोचेगा कि हम कर्म नहीं कर सकते क्या? अच्छा चलो, अगर वो समझते हैं कि हाँ हमें मिलना चाहिए हमारे कर्मों के अनुसार, तो ठीक है मिलेगा, और अगर नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा। नहीं तो भगवान से फिर हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए राजयोग में हम मांगते नहीं हैं भगवान से, हम ये भाषा का ही प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं और बच्चे अधिकारी होते हैं। जैसे घरों में बच्चे माँ बाप से मांगते नहीं रहते, माँ बाप खुद उनकी चिंता कर रहे होते हैं कि इनको हमें क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, ये इनका भविष्य क्या होना चाहिए, ये कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, या जो भी कौन कर रहा होता है, कौन सोच रहा होता है। तो जब हम इस संबंध से परमात्मा को याद करते हैं कि वो हमारे माता पिता हैं, तो हमारी आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी होती, हमें भगवान से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो राजयोग में हम भगवान से मांगते नहीं, ये भाषा का प्रयोग ही हम नहीं करते, हम वो अधिकारी हैं। और जो याद होती है वो समीपता से होती है, और समीपता समानता के आधार पर होती है। जैसे कहा कि जितना हम स्नेह में समीप होंगे तो समानता क्या है, दुनिया में भी हम देखते हैं अगर कोई संबंध करेगा तो समान में करना चाहेगा। दो डॉक्टर आपस में मिलेंगे तो बहुत जल्दी उनमें फ्रेंडशिप हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रोफेशन एक है। दो बच्चे मिलेंगे तो आपस में बहुत जल्दी क्लोज हो जाएंगे, तो ये हम देखते हैं। और यहाँ तक कि जब शादी करते हैं, जन्म कुंडली मिलाते हैं, तो वो कहेगा ज्योतिषी इनके गुण मिलते हैं, गुण समान हैं तो योग है, और समान नहीं है तो योग नहीं है। तो वहां भी क्या देखा जा रहा है, गुणों की समानता है या नहीं, नहीं तो कहेंगे कि ये टिकेगा नहीं। तो समानता चाहिए। तो परमात्मा के साथ भी हमारी तीन समानताएं हैं। तो एक समानता है स्वरूप की समानता, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो हम अपने मन को उसके स्तर पर ले जाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सदा ही निराकार हैं, वो तो हमारे जैसे शरीर धारण नहीं करते, लेकिन आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, तो आत्मा के ऊपर ये देह रूपी आवरण है। जब हम तारों को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, तारों का रबड़ हटाते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं तब करंट फ्लो होती है। रबड़ सहित जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होगी नहीं। तो यहाँ पर हमारे आत्मा पर जो आवरण है उसकी कॉन्शियसनेस को हमको हटाना है, तब जाकर हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाएंगे। तो राजयोग में पहले हम मन को अपनी आत्मिक स्थिति में ले जाते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। हम दो दिन से आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपने देखा कि आपको पहले आत्मचिंतन कराया जाता है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो ये हम आत्मिक स्थिति में मन को लेते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी परमात्मा की फ्रिक्वेंसी के समान होती है, वो ट्यूनिंग होती है। जैसे आप FM रेडियो सुनेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ट्यून करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन जिस फ्रिक्वेंसी पे हो रहा है उसी फ्रिक्वेंसी पर मेरा सेट होगा, तभी हम वो रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं। नहीं तो आप लाख कोशिश कर लो, सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा। तो शिव बाबा तो बहुत हायर फ्रिक्वेंसी पर हैं, और हम यहाँ भौतिक जगत में इस शरीर में, तो हमारी फ्रिक्वेंसी उनसे फिर मैच नहीं करती। तो हम उनके लेवल पर जब आते हैं, उस सोल कॉन्शियस लेवल पर आते हैं, तब हमारी फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच करती है और वो शक्तियाँ हम स्वयं में अनुभव करते हैं। और आत्मा का संबंध परमात्मा से है, शरीर का संबंध नहीं है। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं जो जिससे कनेक्टेड होता है उसको याद करता है। कोई अपने को डॉक्टर समझता है तो उसे पेशेंट याद आते हैं, अपने को पिता समझता है तो बच्चे याद आते हैं, अपने को बिजनेसमैन समझता है तो ग्राहक याद आते हैं, तो जिससे संबंध है वो याद आता है। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है, इसीलिए हम जब आत्मा समझते हैं अपने आप को, तब परमात्मा से संबंध अनुभव करना, उसे याद करना हमारे लिए सहज होता है। और दूसरा है स्थान की समानता। परमात्मा परम धाम निवासी हैं और मैं आत्मा भी कहाँ की रहने वाली हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ। तो वो मन को सहज परम धाम में ले जाने में हमें अच्छा लगता है। जैसे यहाँ भी मानो आप यहाँ आए और आपका किसी से परिचय हुआ, आपको पता चला ये मेरे ही शहर के रहने वाले हैं, और मेरे शहर के रहने वाले नहीं, मेरी सोसाइटी के ही रहने वाले हैं। अब वहाँ तो हम नहीं मिले, लेकिन यहाँ आकर हम मिले, तो आपको कैसा लगेगा? जैसे मेरा भाई मुझे मिल गया। उनसे जितना अपनापन आपको लगेगा, उतना और इतने 100-200 लोग आए उनसे आपको नहीं लगेगा। तो स्थान की समानता भी हमें समीप लाती है कि मेरे ही गांव के हैं या मेरे ही शहर के हैं। और आत्मा और परमात्मा का स्थान घर क्या है? वैसे भी पिता और बच्चे का घर एक ही होता है, तो हम सभी आत्माएं भी परमधाम की रहने वाली हैं। तो हमारे लिए ईश्वर को याद करना परमधाम में सहज होता है। फिर वो परम धाम में रहते हैं तो हमारा मन उन्हें याद करेगा तो कहाँ ट्रेवल करेगा, कहाँ ट्रेवल करेगा परम धाम में। क्योंकि आपके माता पिता अगर मानो एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में रहते हैं और यहाँ बैठे कोई कारण से आप उनको याद करते हैं, तो मन कहाँ ट्रेवल करेगा? क्योंकि वो जहां रहते हैं वहां ही मन जाएगा। अब हमारे परम पिता परम धाम में रहते हैं तो हम उन्हें यहां बैठे याद कर रहे हैं, तो मन कहाँ जाएगा? और कितनी देर लगती मन को परम धाम जाने में? 1 सेकंड। क्योंकि मन की गति तो प्रकाश की गति से भी तेज है, और इसीलिए परम राजयोग में हम मन को परम धाम में ले जाते हैं। क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हैं तो अभी आप वो स्पष्ट समझ पाएंगे कि क्यों हम ये विधि प्रयोग करते हैं। और फिर तीसरी समानता ईश्वर के साथ हमारी गुणों की समानता है। परमात्मा जिन गुणों में सागर है, वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, उनके गुण अनंत हैं। उन्हीं गुणों में आत्मा स्वरूप है। आत्मा भी शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो परमात्मा को इन्हीं गुणों का स्मरण करते हुए हम याद करते हैं और उन गुणों को अपने में अनुभव करते हैं। वास्तव में जीवन में हम चाहते यही हैं। हर एक इंसान क्या चाहता है? शांति चाहता है, सुख चाहता है, प्रेम चाहता है, और परमात्मा उन्हीं गुणों में सागर है। तो भक्ति में भी हम उन्हें इन गुणों से याद करते हैं। आज जो भी हम कीर्तन करते हैं, मानो भजन करते हैं, वो क्या है? कीर्तन माना कीर्ति गाना, भगवान की महिमा गाना। क्योंकि उनके उनके कोई अवगुण है ही नहीं, तो वहां भक्ति में हम क्या करते हैं? थोड़ा जोर जोर से ढोल मंजीरे बजा के, बाजा बजा के हम उसे गाते हैं। उसे होता क्या है कि हमारी सारी शक्तियां बाह्य मुखी हो जाती हैं, और उस कारण हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है थोड़ा समय के लिए, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। भक्ति करते हुए भी हम वही के वही बने रहते हैं, लेकिन राजयोग में हम कोई भजन कीर्तन नहीं करते। हम क्या करते? मनन करते हैं। मनन करते हैं यानी परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए उन्हें हम अनुभव करते हैं, उसमें मन को एकाग्र करते हैं। तो हमारी शक्तियां अंतर्मुखी होती हैं और उससे जीवन में परिवर्तन आता है, यानी उन गुणों का हम स्वरूप बनने लगते हैं, तो जीवन में वो दिव्यता आती है। तो ये अंतर है योग अभ्यास करने में कि हम शांति से मन ही मन उन्हें हम अपने में धारण करते हैं। तो ये राजयोग की अवस्थाएं आप देख रहे हैं। कई बार कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी अच्छा हम भगवान से और सांसारिक चीजें नहीं मांगते, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सुख शांति तो मांग सकते हैं। क्या कहेंगे, सुख शांति मांग सकते हैं? मांग सकते हैं, मांगनी चाहिए। आपको अच्छे से याद हो गया हा? तो सुख शांति भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो है ही दाता। अब मानो आप आग के पास बैठे हैं और आप अग्नि से गर्मी मांगेंगे, आपको गर्मी अपने आप मिलेगी। आग के पास बैठते गर्मी मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप सागर के किनारे जाएंगे, हवा मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। सूर्य उगा है, प्रकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जो उसका गुण है वो अपने आप दे रहा है। सिर्फ मन को हमें ईश्वर के समीप ले जाना है। जैसे ही मन उसके संग में आता है, हम उसकी शांति, उसका प्रेम, उसका सुख व आनंद आत्मा स्वतः ही अनुभव करने लगती, वो भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो हम स्मरण से अनुभव करते हैं। भक्ति में तो सिर्फ नाम स्मरण करते हैं, हम यहाँ भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, वो तो कहेंगे राम 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 या शिव 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 जो भी करेंगे तो, लेकिन यहाँ नाम स्मरण नहीं करना। क्या करना है? उसके गुणों का स्मरण करते हुए उन्हें अनुभव करना है। अब जब हम योग लगाना शुरू करते हैं तो योग लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? मन भटक जाता है ना, हम यही कहते हैं। मन तो लगता नहीं। किसको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरा मन लग जाता है, तो हाथ उठाइए। नहीं नहीं, उठाइए उठाइए, उठा रहे हैं। देखो लगता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है। जी जी हाँ, देखो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 100% लगता है। तो ये हमारी एकाग्रता है। तो जिसका मन सहज एकाग्र हो जाता है उनका योग लग जाता है, नहीं तो मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो ये दिखा रहे हो आपकी योगी योग शुरू करता है, हम सोचना शुरू करते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, और कहाँ जाएगा? अभी यहाँ से बाहर जाएंगे, नाश्ता करना है, फिर इससे मिलना है, जो भी मेरा काम है उसमें मेरी बुद्धि चली जाएगी। फिर हम सोचेंगे नहीं अभी तो योग कर रहे हैं, थोड़ा वापस आ जाओ। फिर योग की बातें सोचना शुरू करेंगे, फिर कोई बात याद आ जाएगी। तो जैसे कि हम युद्ध कर रहे हैं, योग के विचार प्लस दुनिया के विचार दोनों मिला के क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है, और कई बार सिर दर्द हो जाता है उसकी वजह से, मन भारी हो गया। कई बार तो नेगेटिव में भी चले जाते हैं, हम साधारण विचार की बजाय नेगेटिव विचारों में भी चले जाते हैं। फिर सोचते हैं अरे इतनी देर बैठे कुछ हुआ तो नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है कुछ काम कर लो, है ना। फिर ऐसे ऐसे विचार चलते हैं, थोड़ी निराशा आ जाती है कि योग तो लगता नहीं। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल ही होता है। दुनिया में भी अगर आप कोई स्थूल काम भी जो हम करते हैं, हमारे जो भौतिक कार्य हैं, जब हम प्रारंभ करते हैं तो आसान होते हैं क्या? अच्छा आप ड्राइविंग सीखते हैं, एक दिन में ड्राइविंग सीख जाते हैं? समय लगता है नहीं लगता? 15 दिन तो मान के चलो, फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब जाकर के कुछ समय के बाद हमें कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर जब एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप गाड़ी चलाते चलाते बात भी करेंगे, आप मोबाइल भी यूज कर लेते हैं, कई काम भी कर लेते हैं, सबकॉन्शियसली आपकी गाड़ी अपने आप ड्राइव होती रहती है। तो कब कुशलता आई? जब आपने उसको बहुत बार अभ्यास किया। तो यहाँ भी हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक बार में योग लग जाएगा? नहीं, हमें निरंतर उसका अभ्यास करना होगा। मन तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म मन को दिशा देने में हमें थोड़ा समय लगता है, इसीलिए साधना कहते हैं। यानी मन को साधना से सीधी दिशा में लाने में हमें टाइम लगता है। हमारे मन को तो परिस्थितियों अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार, समस्याओं के अनुसार चलते रहने की आदत पड़ी हुई है। मन को हम जो चाहें वो सोचें, ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो योग माना हम मन की कंट्रोलिंग पावर को बढ़ा रहे हैं, मन को वो दिशा दे रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा समय हमें लगता है, जैसे हम कहते हैं एक दीवार को तोड़ने में मैंने 100 हथौड़े लगाए, 100वें हथौड़े में दीवार टूटी तो क्या पहले के 99 हथौड़े बेकार गए? क्या कहेंगे? हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में जाकर वो टूट गई। तो हमारा हर अभ्यास हमें अनुभव की ओर ले जा रहा है। 10 बार मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ लेकिन 11वीं बार मुझे शांति आनंद मिला, तो फिर अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं अपने आप टाइम ढूंढूंगी कि मुझे कब टाइम मिले और फिर से हम योग में बैठें और ऐसा अनुभव करें। तो इनिशिएशन में थोड़ा सा हमें कई बार मुश्किल आती है और फिर हम मन को मनन की स्थिति में ले जाते हैं। आत्मिक स्थिति में मन को स्थित किया, फिर मन परम धाम की ओर यात्रा करता है जहाँ शिव बाबा रहते हैं, परमात्मा रहते हैं, और मन को हम परमात्मा के गुणों में स्थिर करते हुए संबंधों का भी अनुभव करते हैं परमात्मा के साथ। जो भी संबंध मुझे प्रिय है, पहले हम वो संबंध अनुभव करते हैं, चाहे पिता के संबंध से, चाहे दोस्त के संबंध से, और अपने दिल की रूह रिहान, इसको रूह रिहान कहते हैं क्योंकि रूह की रूह से बात है, परमात्मा सुप्रीम रूह है ना, सुप्रीम सोल है और हम सोल हैं, तो हम सोल रूप में परमात्मा से कन्वर्सेशन करते हैं। तो मेरे दिल में कोई भी बोझ है या कोई चिंता है, कोई परेशानी है, वो हम परमात्मा से शेयर कर सकते हैं। तो वो हम रूह रिहान करते हैं और धीरे धीरे मन उन संबंधों का अनुभव करते हुए परमात्मा में एकाग्र होने लगता है। यानी एकाग्रता का मतलब क्या है? उसके सिवाय अब मेरे मन में और कोई नहीं। जैसे वो एक महाभारत का मिसाल देते हैं, गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो परीक्षा भी लेते हैं कि ये कहाँ तक सीखे हैं। तो उन्होंने वो परीक्षा के लिए उनके लिए एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया रखी और वो चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था। तो सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया, कहा युधिष्ठिर आंख पे निशाना लगाना है, पर बताओ मुझे क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी पेड़ दिख रहा है, डालियां भी दिख रही है, चिड़िया भी दिख रही है, आंख भी दिख रही है। तो गुरु ने कहा तुम हट जाओ, तुमसे निशाना लगेगा नहीं। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन से भी वही सवाल पूछा क्या दिख रहा है, उसने भी वही जवाब दिया। तो उन्होंने कहा तुमसे भी निशाना लगेगा नहीं। फिर उन्होंने भीम को बुलाया, भीम ने भी वही कहा, गुरुजी सब दिख रहा है। उन्होंने कहा तुम भी नहीं लगा पाओगे। अब अर्जुन की बारी थी, तो अर्जुन आया तो 1 मिनट वो थोड़ा देखता रहा। जो गुरु ने पूछा तो उसने कहा कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा तुम तीर चलाओ, तो तीर चलाया तो सीधा आंख में जाके लगा। तो ये है एकाग्रता, माना लक्ष्य के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो परमात्मा हमारा लक्ष्य है योग में, और मन पूरी तरह से ईश्वर के रूप में गुणों में एकाग्र है, उसके अलावा सबसे न्यारा, अपनी देह से भी, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से हम पूरी तरह से न्यारा होकर के परम धाम में मन को ईश्वर में एकाग्र अनुभव करते हैं। ये एकाग्रता की स्थिति के बाद अनुभूति की स्थिति में मन चला जाता है, और अनुभूति की स्थिति माना अब संकल्प भी हमें चलाने की जरूरत नहीं है, मन पूर्णतया शांत, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट साइलेंस का अनुभव हम करते हैं, और मन उस आनंद का और ईश्वरीय शक्ति के प्रवाह का स्वयं में अनुभव करता है। और अनुभूति की स्थिति में हमारा मन बदल जाता है। मानो आप योग में बैठे और मन किसी कारण से थोड़ा अशांत था, अनुभूति के बाद मन शांति की स्थिति में आ जाएगा। आप योग में बैठे किसी कारण से थोड़ा उदास थे आप, लेकिन अनुभूति की स्थिति से मन खुशी में आ जाएगा, आनंद में आ जाएगा। कोई बात को लेकर आप दुखी थे, लेकिन जब अनुभूति की स्थिति में पहुंचे तो मन सुख की स्थिति में आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा योग लगा और हमें वो प्राप्ति भी हुई, अनुभव हुई। तो ये अनुभूति की स्थिति में पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, हमें बहुत जल्दी अनुभूति की स्थिति नहीं आती। नॉर्मली हम रूरियान तक ही रह जाते हैं, यानी भगवान से जो हमारी कन्वर्सेशन है वहां तक हम अधिक पहुंचते हैं, अनुभूति की स्थिति तक हम थोड़ा कम पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर आप आधा घंटा या उससे थोड़ा अधिक योग अभ्यास करेंगे तो फिर थोड़ा अनुभूति के स्तर तक मन जाना शुरू होता है। तो परमात्मा से रूरियान माना अपने दिल की बात करना, जैसे किसी मनुष्य से भी हम दिल की बात करते हैं। और परमात्मा तो हमारी हर बात को गोपनीय रखते हैं, ही इज ए वेरी साइलेंट एंड फेथफुल लिसनर। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा लिसनर नहीं हो सकता, आपकी बात किसी दूसरे तक ना पहुंचे कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य अपनी कमजोरी की बातें ज्यादातर किसी को सुनाना पसंद नहीं करते हैं। फिर परमात्मा से हमें कभी भय नहीं, दुनिया में कई लोग भय से भगवान को याद करते हैं, पर परमात्मा तो प्यार का सागर है, तो उसको हमें भय से याद नहीं करना। वो तो और ही हमारा रक्षक है और वो हमें शक्ति और सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। और राजयोग में जो हम एकाग्र स्थिति में होते हैं, जैसे चित्र में दिखाया है कि एक कागज अगर सूर्य की रोशनी में पड़ा है तो वो नहीं जलेगा कभी भी ना, मतलब ऐसे ही पड़ा है। लेकिन अगर एक लेंस लगा कर के सूर्य की किरणों को फोकस कर दिया जाए तो मिनट्स में वो कागज जल जाता है, क्योंकि वो सूर्य की पूरी शक्ति एक बिंदु पर एकाग्र हो गई। तो एकाग्रता में इतनी पावर है। तो जब हम परमात्मा पर पूरी तरह से अपने मन को एकाग्र करते हैं तो ये हमारी जन्म जन्मांतर की अशुद्धियां जो आत्मा में हैं, अशुद्धियां माना जो विकार हैं, वो विकारों को नष्ट करने लगते हैं और हमारे पाप भी नाश होते हैं और आत्मा पवित्र बनती है, शुद्ध होती है। तो राजयोग से ये अनुभव हम करते हैं और आत्मा रूपी बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है योग अभ्यास करने से। प्रतिदिन कितने लाभ होते हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं आपके विभिन्न सत्रों में। तो स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से, यानी वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो परम ज्योति है और सर्व गुणों के सागर है, उस रूप में ही परमात्मा को याद करना, ये राजयोग का अभ्यास है। अब राजयोग की विधि क्या है, आधार तो हमने समझा। विधि में बैठक, हम सहज बैठक लेते हैं, कोई कठिन आसन हमें राजयोग में लगाने की आवश्यकता नहीं है और कठिन क्रियाएं भी करने की आवश्यकता नहीं है। राजयोग में हम सुखासन में बैठते हैं, आजकल तो जमीन पर नहीं बैठते तो कुर्सी पर या सोफे पर बैठते हैं। तो जहां हम सहज बैठ सकते हैं 20 मिनट आधा घंटा आप अपने शरीर को स्थिर रख सकते हैं वहां हम बैठें। और उस सहज बैठक में हम अपने मन को उन विचारों में, जो हमारे स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, उन विचारों में हम ले जाएं। तो इसमें हमें मन को कोई विचार शून्य नहीं करना, वो आपने समझा कि मन को हम थॉटलेस नहीं करते और मन को हम सप्रेस भी नहीं करते कि ये विचार मेरे मन में नहीं आना चाहिए, ये क्यों आ गया। अगर हम थॉटलेस करेंगे तो संभव नहीं, क्योंकि मन की प्रकृति ही सोचने की है। आपने कुछ सेकंड्स के लिए मन को थॉटलेस किया, फिर उसके बाद और ही तेज गति से मन सोचने लगेगा। ये स्प्रिंग को दबाने की तरह है, स्प्रिंग को दबाएंगे और वापस कैसे आएगी, वो दुगनी स्पीड से आएगी। तो इसीलिए मन थॉटलेस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। लेकिन मन को हम सही दिशा दे सकते हैं, तो मन को हम आध्यात्मिक दिशा देते हैं, आत्मचिंतन परमात्म चिंतन में हम अपने मन को ले जाते हैं। फिर कई सोचते हैं हमारा मन तो बहुत चंचल है तो हमारे लिए तो मेडिटेशन करना संभव ही नहीं है, पर अभ्यास से ये संभव है जैसे आपको बताया। और आंख बंद करना आवश्यक है ध्यान करने के लिए, ये भी हमारा एक भ्रम है, सोचते हैं खुली आंख से तो ध्यान हो ही नहीं सकता तो हम आंख बंद कर लेते हैं। पर राजयोग कर्म योग है, और कर्म योग में यानी कर्म करते हुए हम आंख बंद कर लेंगे तो कर्म कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम आंख खुली रख करके योग का अभ्यास करते हैं। अगर हम आंख बंद कर लेते मानो तो क्या होता है, आंख बंद करके हम सोते हैं तो आप आंख बंद करके योग करेंगे तो 5 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी, और थके होंगे तो और भी जल्दी नींद आ जाएगी। कई बार हम जब सामने योग कराते हैं तो हम देखते हैं बैठे बैठे ही सो जाते हैं, क्यों सो जाते हैं, क्योंकि आंख बंद करते ही सिग्नल पहुंचता है ब्रेन को सोना है, तो 5 मिनट के अंदर और मन को शांति मिलती है। योग करना माना मन शांत होना, मन शांत होता है आंख बंद है तो निद्रा में चले जाते, तो हम निद्रा योग करते हैं, राजयोग नहीं कर पाते। अब करना तो हमें राजयोग है। और फिर आंख बंद करने से हम सपने भी देखते हैं, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है जब हम आंख बंद करते हैं, तो यहां भी हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होने से बहुत सारी बातें हमें पुरानी याद आने लग जाती हैं, और उनसे अपने मन को निकाल कर ईश्वर में एकाग्र करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए राजयोग में हम खुली आंख से योग करते हैं। खुली आंख में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, शुरू शुरू में आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा, लगेगा ये दिख रहा है, कौन आ रहा है जा रहा है, क्या आवाज हो रही है, लेकिन खुली आंखों से हमें मन को काम में एकाग्र करने की आदत है। मानो आप किसी काम में लगे हुए हैं और कोई आपके पास से गुजर जाता है, फिर कोई पूछता है यहां से वो गया, तो आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, आंखें तो खुली थी ना, क्यों नहीं देखा, क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ है, तो खुली आंखें होते हुए भी हमने नहीं देखा या नहीं सुना। ऐसे भी होता है कि हम सुनते भी नहीं है और देखते भी नहीं है, तो यहां भी शुरू में हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमारा मन परम धाम में परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाता है फिर हम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, भले ही ढोल बज रहे हों तो भी हमें सुनाई नहीं देगा। तो ये मन की एकाग्रता की बात है कि मन कहाँ है, तो मन जहां होता है मन वही अनुभव करता है। इसीलिए खुली आंख से हम कर्म योगी की तरह ये अभ्यास कर सकते हैं। और हम रेड लाइट्स करते हैं, देखा आपने हॉल में लाइट्स को हम चेंज करते हैं, तो वास्तव में परम धाम का रंग कुछ इस तरह का है, हम एग्जैक्ट कलर तो नहीं बना सकते लेकिन फिर भी उसी तरह का आभास हम करते हैं और मन को एकाग्र करने में हमें मदद मिलती है। फिर लाल रंग स्टॉप का भी सिग्नल है, तो यहाँ हमें एक सिग्नल मिलता है कि अभी हमें सांसारिक विचार नहीं करने, अभी हमें आत्मचिंतन और ईश्वरीय चिंतन करना है। और तीसरा, लाल रंग शक्ति को भी ग्रहण करता है, तो योग से हमें शक्ति मिलती है, उसके लिए भी वो सहयोगी है। और हम गीत बजाते हैं, आप देखते हैं जब भी कोई सेशन शुरू होता है तो प्रभु स्मृति का गीत बजता है, तो गीत हमारे मन को दिशा देने में सहायक होते हैं और एकाग्रता में भी सहायक होते हैं। दुनिया में भी हम देखते हैं कोई देशभक्ति का गीत सुन रहा है तो उसके भाव कैसे हो जाते हैं, देशभक्ति के होने लगते हैं। कोई ऐसे ही प्रभु भक्ति के गीत सुनता है, ईश्वर की भक्ति के गीत सुनता है तो उसके भाव कैसे हो जाते हैं। तो यहां भी जब हम परमात्मा की स्मृति के गीत सुनते हैं तो मन कोई भी सांसारिक विचारों में होता है लेकिन मन को दिशा मिल जाती है, तो ये हमें सहायक है। तो इसीलिए ये आधार अल्पकाल के लिए, माना जब तक हमारा योग नहीं लगता, हमेशा हमें लाइट होगी, गीत होगा, हम बैठे होंगे तभी योग करेंगे या कर पाएंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे कहा, हम चलते फिरते उठते बैठते अपने कोई भी दैनिक कर्म करते हुए भी हम योग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमसे एक संकल्प की दूरी पर है। उसको याद करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? मन को ईश्वर में लगाना है ना, तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। तो ये तो सिर्फ आधार है हमारे को योग की शुरुआत के लिए, ताकि हमें एकाग्रता में मदद मिले। पर एक बार जब मन को अनुभव अभ्यास हो जाता है तो फिर हमें ये सब आधार आवश्यक नहीं होते हैं। तो अभी जो विधि हमने आपको बताई, उस विधि के अनुसार हम कुछ मिनट्स के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर बैठ जाएं। अपने मन को आसपास के व्यक्तियों से, आवाजों से न्यारा कर लें। जैसे विचार मैं आपको देती हूँ, उसी अनुसार मन को चिंतन देते हुए अनुभव करें। स्वयं को तैयार करें एक अंतर यात्रा के लिए, जो मेरे मन की यात्रा है ईश्वर की ओर। मैं एक चैतन्य शक्ति, दिव्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने कर्म करने के लिए मैंने ये शरीर धारण किया है। अपने निजी स्वभाव में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझे पसंद है। शांति में ही सुख समाया है। शांति ही शक्ति है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों के पार परम धाम है। ले जाएं मन को इस भौतिक जगत से पार, उस सुनहरी लाल प्रकाश के लोक में। जहां मेरे पिता परमात्मा रहते हैं, मैं स्वयं को शिव बाबा के अति समीप अनुभव कर रही हूं। शिव बाबा, आप शांति के सागर हो। आपके सानिध्य में मेरा मन शांत होता जा रहा है। आप सर्वशक्तिवान हैं। ईश्वरीय शक्तियां मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूं, और जब परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं जो परिवर्तन लाना चाहूं ला सकती हूं। शिव बाबा, आप प्यार के सागर हो, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं। आपने मुझे अपना बच्चा बनाया है। अपना प्यार देकर मेरी जन्म जन्मांतर की अभिलाषा को पूर्ण किया है। आप ही मेरे सत शिक्षक सदगुरु हो, मेरे खुदा दोस्त हो, साथी हो, सहारे दाता हो, मेरे कल्याणकारी हो। आप ही मुझे सद्बुद्धि देने वाले हैं। श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। मैं सदा आपकी श्रीमत पर चलूंगी। अपना जीवन श्रेष्ठ बनाऊंगी। शिव बाबा की याद से मेरा मन ईश्वरीय सुख का अनुभव कर रहा है। ये पल मेरे लिए अनमोल है, जब मैं ईश्वर के संग हूं। बहुत ही न्यारा और प्यारा अनुभव है, और इस अनुभव को लेकर मैं अब इस साकार जगत में अपने शरीर में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। और सारा दिन मैं स्मृति रखूंगी, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति शांति।